blessed Savior. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Jai Dhavalangate Neyavuriya Sayalabhuvana Bhavanagano Evalanana Sariro Ananjano Namo Chando. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र पर रची हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक और श्री यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। अभी हम प्रथम अधिकार, जो पेज दोष विहत्ति नाम का अधिकार है, उसमें पृष्ठ संख्या 47 पर आ गए। 47 ज्ञान प्रमाण की बात चल रही है, और वो ज्ञान है, और वो मति ज्ञान, वो जो केवल ज्ञान का अंश है, उसके द्वारा केवल ज्ञान की प्रतीति हो सकती है, ये बात यहाँ चल रही थी। जैसे अवयव के द्वारा पूरा अवयव ही जान सकते हैं, उसी प्रकार ये बात है, इसकी विस्तार से चर्चा हुई थी। 47 पृष्ठ पर आते हैं हम। दूसरी बात, पहली बात तो उन्होंने बता दिया, अभी दूसरी बात जो सेंटर में है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12वीं लाइन में मिला, दूसरे जहां लिखा है, दूसरे नहीं, दूसरी बात। यदि जीव का लक्षण अचेतना माना जाएगा तो पुद्गल द्रव्य भी जीव हो जाएगा, क्योंकि अचेतन लक्षण तो पुद्गल का है, तो वो भी जीव हो जाएगा, क्योंकि अचेतनत्व की अपेक्षा इन दोनों में कोई विशेषता नहीं रह जाती है। पुद्गल से जीव को जुदा करने के लिए यदि जीव का लक्षण अमूर्त और अचेतन माना जाए, सो भी ठीक नहीं हो सकता, सो भी नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, पुद्गल मूर्त है और ये अमूर्त है, तो इसमें डिफरेंस हो जाए, भले अचेतन हो, तो कहते ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर धर्म द्रव्य को भी जीवत्व का प्रसंग प्राप्त होता है, वह भी अचेतन और अमूर्त है। यदि जीव को अचेतन मानेंगे और पुद्गल से डिफरेंशिएट करने के लिए अमूर्त है इसलिए वो पुद्गल नहीं हो सकता, कहते धर्म द्रव्य में भी ये दो लक्षण है, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। जीव का लक्षण अचेतन अमूर्त और असर्वगत भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा असर्वगत है नहीं, जो सभी ओर ना, क्योंकि ऐसा मानने पर उसी धर्म द्रव्य से यह लक्षण व्यभिचरित अर्थात अति व्याप्त हो जाता है, क्योंकि ये तो लक्षण धर्म द्रव्य में भी पाया जाता है। जो लक्षण लक्ष्य के सिवाय अलक्ष्य में चला जाता है, उसे व्यभिचरित या अतिव्याप्त कहते हैं, यानी जो लक्षण लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी हो, उसको अतिव्याप्त कहते हैं, अतिव्याप्त लक्षण। ये तो दोष है ना, ये सच्चा लक्षण नहीं हो सकता। जीव का लक्षण अचेतन अमूर्त और असर्वगत मानने पर वह धर्म द्रव्य में भी पाया जाता है, अतः यहाँ लक्षण को अतिव्याप्त कहा है। उसी प्रकार जीव का लक्षण सर्वगत अमूर्त और अचेतन भी नहीं हो सकता। अभी हम उसको सर्वगत कहेंगे, जीव को सभी ओर व्यापने वाला, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आकाश से यह लक्षण व्यभिचरित अर्थात अतिव्याप्त हो जाता है, क्योंकि ये सर्वगत लक्षण तो आकाश द्रव्य का है, वो भी अमूर्त अचेतन और सर्वगत है। और चेतन द्रव्य का अभाव किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम कहेंगे चेतन द्रव्य ही नहीं है तो ये भी नहीं बात हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्पष्ट रूप से चेतन द्रव्य की उपलब्धि होती है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उसको हम जानते हैं या उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। तथा समस्त पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए भी अचेतन पदार्थ के प्रतिपक्षी चेतन द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। क्या कहते हैं ये, और एक नया नया बताया, क्या कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित है तो अचेतन कहेंगे तो वहां चेतन तो हो जाना चाहिए, क्यों अचेतन कहा ना लक्षण हमने, तो उसका प्रतिपक्षी कोई चेतन द्रव्य होना चाहिए, उसके लिए वो यहाँ उद्धृत करते हैं कहा भी है कह के। सत्ता सौवपयत्था सविसरुवाणंत पचाया भंगुपाय दुवत्ता सपड़िवक्खा हवयेका। ये हो गई गाथा अपनी। भंग उपाय दुवत्ता, भंग यानी क्या, भंग उत्पाद और ध्रुवता, यानी भंग का अर्थ क्या होना चाहिए, व्यय। हाँ, भंग यानी व्यय। हाँ, फिर उत्पाद और ध्रुव। देखो सत्ता समस्त पदार्थों में स्थित है, विश्व रूप है। ये पंचासी का गाथा है, आठ नीचे लिखा है, देखो ये जो गाथा है वो पंचासी काय की है। सत्ता समस्त पदार्थों में स्थित है, विश्व रूप है, अनंत पर्यायात्मक है, व्यय उत्पाद और ध्रुवात्मक है, तथा अपने प्रतिपक्ष सहित है और एक है। अब इसका विशेषार्थ बताते हैं। पदार्थ न सर्वथा नित्य ही है और न क्षणिक ही है, किंतु नित्यानित्यात्मक है। ये तो आसान है ना बात समझने में, हमारा हो चुका है बहुत बार। उनमें स्वरूप का अवबोधक यानी ज्ञान कराने वाला, जिसके द्वारा स्वरूप का अवबोध यानी ज्ञान होता है, ऐसा अन्वय रूप जो धर्म, अन्वय ने कंटिन्यूटी, वही का वही है, द्रव्य वही है, पर्याय बदलने पर वही द्रव्य है, जिस धर्म के द्वारा हम जानते हैं उसको यहाँ क्या कहा, स्वरूप का अवबोधक अन्वय रूप जो धर्म पाया जाता है उसे सत्ता कहते हैं। वह सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप समस्त पदार्थों के सादृश्य की सूचक होने से एक है। आपको याद है इस एक सत्ता जो कहा है उसको क्या कहते हैं? हाँ अरविंद भाई याद है, हाँ महासत्ता, इसको महासत्ता कहते हैं। हाँ, ये बात महासत्ता, वो स्वरूप सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, इसको हमने कल याद किया था ना। हाँ, यानी ये जो सब में जो सत्ता सत्पना है तो उसको यहाँ क्या कहा है, सत्ता। कैसी? वह सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप समस्त पदार्थों के सादृश्य की सूचक होने से, सब में है ना, ये सादृश्य अस्तित्व भी इसको ही कहेंगे, इसको यहाँ महासत्ता भी कहेंगे। प्रत्येक पदार्थ का ये लक्षण है, होने से एक है, समस्त पदार्थों में सत, इस प्रकार का वचन व्यवहार और सत, इस प्रकार का ज्ञान सत्ता मूलक ही पाया जाता है, इसलिए वह समस्त पदार्थों में स्थित है। कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, तो ये जो सत है, सत्ता कहो या सत कहो, वो सभी पदार्थों में है, और इसीलिए उसका वचन व्यापार यानी हम उसको कह भी सकते हैं कि पदार्थ सत है और जान भी सकते हैं। समस्त पदार्थ सविश्वरूप, सविश्व यानी अनेक रूप, अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन त्रिलक्षणात्मक स्वभाव के साथ विद्यमान है। सत द्रव्य लक्षणम, और वो सत कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो कहते हैं प्रत्येक पदार्थ, समस्त पदार्थ है ना, सभी पदार्थ सविश्वरूप है, ऊपर लिखा ना, सत्ता सव पयत्था, और कैसे सविश्वरूपा, सविश्वरूप है, अनेक रूप है, वो अनेक रूप है ना, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीन लक्षणों से युक्त है, त्रिलक्षणात्मक है, इसलिए वह सत्ता सविश्वरूप है। अनंत पर्यायों से वह जानी जाती है, हाँ, अनंत पर्यायों से वह जानी जाती है, इसलिए अनंत पर्यायात्मक है, पर्यायों में व्यक्त है ना ये। यद्यपि सत्ता इस प्रकार की है, फिर भी वह सर्वथा स्वतंत्र न होकर अपने प्रतिपक्ष सहित है। सत्ता यानी होवापणु, अस्ति, उसका प्रतिपक्ष क्या होगा? हाँ, नास्ति कहो, असत्ता कहो, अभाव कहो। तो कहते अर्थात सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता है। त्रिलक्षणात्मकत्व का प्रतिपक्ष अत्रिलक्षणात्मकत्व है, वह समस्त पदार्थों में स्थित है, इसका प्रतिपक्ष एक पदार्थ स्थितत्व है। ये सत्ता जो पहले हमने देखा सादृश्य है, सभी पदार्थों में स्थित है, और उसका प्रतिपक्ष क्या है? अत्रिलक्षणात्मक, वो प्रतिपक्ष जो है एक पदार्थ में है। सविश्व रूपत्व का प्रतिपक्ष एक रूपत्व है, और अनंत पर्यायात्मकत्व का प्रतिपक्ष एक पर्यायात्मकत्व है। इस कथन से यह निष्पन्न होता है कि सत्ता दो प्रकार की है। अभी इसको फिर दोबारा समझाते हैं, महासत्ता और अवांतर सत्ता। यह 85 में इसका विस्तार से वर्णन भी है। महासत्ता यानी सभी पदार्थों में है ना, इसलिए उसको महासत्ता कहेंगे। उस अपेक्षा से सत्ता एक है, वो सभी पदार्थों में, ऐसा कहेंगे। यहां से पूर्व महासत्ता का स्वरूप निर्देश तो किया ही है। अभी हमने ऊपर जो देखा था, जो समस्त पदार्थों में स्थित है, सविश्व रूप है वगैरह वगैरह, त्रिलक्षणात्मक है, यह है महासत्ता। अवांतर सत्ता प्रतिनियत वस्तु में रहती है, यानी अपने अपने द्रव्य में रहती है अवांतर सत्ता, क्योंकि इसके बिना प्रतिनियत वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। सभी पदार्थ सत्पना से तो समान है। सत कहते ही कौन सा द्रव्य आपको याद आता है? 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य सत है? 6 द्रव्य सत है, फिर भी 6 नाम पड़े हैं, तो उनमें अपनी अपनी कोई विशेषता होनी चाहिए, तो सत कहेंगे तो 6 द्रव्य आ जाते उसमें। परंतु अवांतर सत्ता ऐसी सत्ता है कि उसके द्वारा हम ये जीव है, ये पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें भेद पा सकते हैं, उनको अलग अलग जान सकते हैं, तो ये अवांतर सत्ता है। तो अवांतर सत्ता प्रतिनियत वस्तु में रहती है, क्योंकि इसके बिना प्रतिनियत, प्रतिनियत निश्चित अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः अवांतर सत्ता महासत्ता की अपेक्षा असत्ता है। अपेक्षा लगाई हो, यानी अवांतर सत्ता वो महासत्ता नहीं है, महासत्ता वो अवांतर सत्ता नहीं है। वस्तु का जिस रूप से उत्पाद होता है वह उस रूप से उत्पादात्मक ही है, जिस रूप से व्यय होता है उस रूप से वह व्ययात्मक ही है। ही लगाया हो, क्योंकि अपेक्षा बताई, अपेक्षा बताते तो आगे ही लगाते। पहले तो कहते तीनों यानी उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, ऐसा कहें तो जिस रूप से उत्पाद है उस रूप से उत्पाद ही है, और जिस रूप से व्यय है उस रूप से व्यय ही है। वस्तु का जिस रूप से उत्पादक होता है वह इन्हें वह उस रूप से उत्पादात्मक ही है, जिस रूप से व्यय होता है उस रूप से वह व्ययात्मक ही है, तथा जिस रूप से वस्तु ध्रुव है उस रूप से वह द्रव्यात्मक ही है। वस्तु की बात है ना, वस्तु को हम जिस रूप में उत्पादात्मक देख रहे हैं उस समय वह उत्पादात्मक ही है वस्तु, क्योंकि हमने वो उत्पाद की अपेक्षा हम वस्तु को देख रहे हैं। जिस समय हम वस्तु को द्रव्य को क्रोधी देख रहे हैं तो अभी लोभ का व्यय हो गया, तो उस समय क्रोध रूप उत्पाद ही चल रहा है ना उस समय, और लोभ पर्याय का व्यय हो गया है तो उस पर्याय की अपेक्षा लेना उसमें। इस प्रकार वस्तु के उत्पन्न होने वाले, नाश को प्राप्त होने वाले और स्थित रहने वाले धर्म त्रिलक्षणात्मक नहीं है। जो धर्म उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न ही हो रहा है, जो व्यय हो रहा है वो व्यय ही हो रहा है, और जो ध्रुव है वो ध्रुव ही है इस अपेक्षा से। अतः त्रिलक्षणात्मक सत्ता की अत्रिलक्षणात्मक सत्ता प्रतिपक्ष है, यानी जो उत्पाद है वो व्यय नहीं है और ध्रुव नहीं है, जो व्यय है वो उत्पाद नहीं है वो ध्रुव नहीं है, जो ध्रुव है वो उत्पाद नहीं है वो व्यय नहीं है। इस प्रकार से हमने वो प्रवचन सार में भी आया कि ये हमने एक पदार्थ की जो स्वरूप सत्ता है वह अन्य पदार्थों की नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषता सहित है। तो एक वस्तु की जो स्वरूप सत्ता है वह अन्य पदार्थ की स्वरूप सत्ता नहीं है। अतः प्रत्येक पदार्थ में रहने वाली स्वरूप सत्ता सर्व पदार्थों की एकत्व रूप महासत्ता की प्रतिपक्ष है। हमने देखा सभी पदार्थों में रहने वाली एक महासत्ता है, क्यों? सभी द्रव्यों का लक्षण त्रिलक्षण वो है ना, उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक उसका लक्षण है। परंतु अभी एक द्रव्य की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो जिस धर्म का वहां उत्पाद रूप जो धर्म है, व्यय रूप धर्म है और द्रव्य रूप धर्म है, वो तीन अलग अलग है, और एक वस्तु अन्य वस्तु से स्वरूप की अपेक्षा भेद है, उसमें भिन्नता है, उस अपेक्षा से कहते हैं। यानी अवांतर सत्ता है उसमें ऐसा एकत्व नहीं, वो महासत्ता नहीं है, उसमें एकत्व नहीं अन्य वस्तु से, और महासत्ता सब में समान है, एक रूप है। यह घट है पट नहीं, इस प्रकार का प्रतिनियम प्रतिनियत पदार्थ में स्थित सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखो पट भी है और घट भी है, पट है वस्त्र, दोनों पदार्थ की अपेक्षा तो है और उनका लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, वो सत है। परंतु हमने ये पट है और ये घट है ऐसा जाना तो सही, तो उसकी अपनी विशेषता है तभी तो जाना उसको। तो कहते हैं यह घट है और पट नहीं है, कोई भी वस्तु हम जानते हैं ना, ये पुस्तक है, पुस्तक है ऐसा जाना, तो ये पुस्तक है तो ये पेन नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये अन्य कोई चीज नहीं है, उसी समय हमारा ज्ञान चल रहा है, क्योंकि उसके विशेषता से हमने उसको जाना है। क्या कहते हैं फिर, यह घट है पट नहीं, इस प्रकार का प्रतिनियम प्रतिनियत पदार्थ में स्थित सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम कोई चीज बराबर उसको पहचानते हैं ये यही है अन्य नहीं जब कहते हैं, तो उसमें जो उसका सत्ता है उस पदार्थ में जो विशिष्ट निश्चित प्रतिनियत है ना, उस पदार्थ का जो अपना स्वरूप है, उस डेफिनेट निश्चित जो कोई सत्ता है उसकी, उसके द्वारा ही उसको हम पहचान सकते हैं। अतः सर्व पदार्थ स्थित महासत्ता की अवांतर सत्ता प्रतिपक्ष है। महांतर सत्ता सभी पदार्थों में स्थित है और उसके द्वारा वो सभी सदृश है, और अवांतर सत्ता की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी खासियत है, स्पेशलिटी है, उसके द्वारा वो भिन्न भिन्न पहचाने जाते हैं। प्रतिनियत एक सत्ता के एक रूप सत्ता के द्वारा ही वस्तुओं का प्रतिनियत स्वरूप पाया जाता है, पहले वो महासत्ता को विश्वरूप कहा था और अभी इसका अपना अपना जो स्वयं का भिन्न भिन्न है, तो वस्तुओं का प्रतिनियत स्वरूप पाया जाता है। अतः प्रतिनियत सत्ता सविश्वरूप सत्ता की प्रतिपक्ष है। प्रतिनियत है ना, प्रति वस्तु की जो अपनी अपनी जो है अवांतर सत्ता जो यहाँ कहा है वो सविश्वरूप, ये कैसी है, एक रूप है, और वह सविश्व तीन लक्षणात्मक कही थी उसको, उसको सविश्वरूप कहा था, अनेक रूप यानी वो त्रिविध रूप। प्रतिनियत एक वस्तु में उसका जो उत्पाद है वो उत्पाद ही है, व्यय है वो व्यय ही है, और जो द्रव्यता है वो द्रव्यता ही है। प्रत्येक पर्याय में रहने वाली सत्ताओं के द्वारा ही पर्याय अनंतता को प्राप्त होती है। अतः एक पर्याय में स्थित सत्ता अनंत पर्यायात्मक सत्ता की प्रतिपक्ष है। ये जो महासत्ता दिखी थी हमने ऊपर, अनंत पर्यायात्मक कहा था, कोई भी पर्याय है फिर भी वो सत की अपेक्षा से उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और यहां प्रत्येक पर्याय हम अलग अलग पहचान सकते हैं। पर्याय उसी को कहेंगे तो उसमें कोई विभिन्नता तो है ना, उसमें भी डिफरेंस, जैसे द्रव्य में हमने देखा वैसे यहां पर्यायों में चल रही बात। तो कहते पर्याय प्रत्येक पर्याय में रहने वाली सत्ताओं के द्वारा ही पर्याय अनंतता को प्राप्त होती है, यानी अनंत अलग अलग हम पहचान सकते हैं। अतः एक पर्याय में स्थित सत्ता अनंत पर्यायात्मक सत्ता की प्रतिपक्ष है। इससे निश्चित होता है कि पदार्थ अपने प्रतिपक्ष सहित है। इसी प्रकार चेतन और अचेतन पदार्थों में भी समझ लेना चाहिए। ये भी सब न्याय ही न्याय भरे हैं इसमें तो। प्रत्येक द्रव्य का ऐसे काल द्रव्य का प्रतिपक्ष नहीं लेना है। देखो वो काल द्रव्य है पहचाना हमने, वो काल द्रव्य जीव नहीं है पहचाना, क्यों, उसके अपने लक्षणों के द्वारा। सब द्रव्यों में समानता क्या है, सद द्रव्य लक्षण उत्पाद वेद रुवात्मक जो है वो। अब काल की कुछ विशेषता है तभी तो हमने उसको अलग निकाला ना, जैसे वर्तना उसका गुण है, उसमें कोई गुण विशिष्ट है, उसके पर्याय कोई अलग है। पर्याय 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 ये तो सब द्रव्यों में चल रही है, परंतु जीव की पर्याय कैसी है, जानंद घन रूप हम कहेंगे अभी, पुद्गल की कैसी है, स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय है, तो अपने अपने हरेक की अलग अलग जुदी जुदी है। हाँ देखो यहाँ जो महासत्ता कही थी वो अनंत पर्यायात्मक अनंत पर्यायों में स्थित कही थी। अनंत पर्याय हो जाएगी तो भी द्रव्य तो वही का वही है, परंतु हम प्रत्येक पदार्थ अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं है, उसमें भिन्नता है ना, इसलिए वो एक सिद्ध हो जाती है, वो दोनों अलग अलग है।
यहाँ पर आप जो पूछ रहे हैं वो इस तरह है कि प्रत्येक पर्याय की सत्ता जुदी है। अब एक एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, ऐसी अनेक पर्याय उसकी अनंतता सिद्ध की है। अगर सब मिलकर एक होगी तो अनंत नहीं होंगे ना, दो है जुदे जुदे, मान लो किसी माँ बाप को सात बेटियां हैं तो हर एक बेटी अलग है इसलिए सात है, ऐसा कहेंगे, सातों एक होगी तो सात कैसा कहेंगे। इसी तरह प्रत्येक पर्याय की सत्ता जुदी है इसलिए वो एक दो गिनते गिनते उसकी अनंतता सिद्ध होती है, यही पूछा ना आपने। प्रत्येक पर्याय में रहने वाली सत्ताओं के द्वारा, सत्ताओं के द्वारा ही पर्याय अनंतता को प्राप्त होती है, यही पूछा था ना आपने।
अभी 35वां ये साइन है वो किसकी है मालूम है ना, हाँ जय धवला की, हाँ नीरसेन आचार्य ने लिखी है। यदि कहा जाए अजीव से जीव की उत्पत्ति होती है सो भी कहना ठीक नहीं है, है ना, पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है, ये पृथ्वी अग्नि जल वगैरह वगैरह, क्योंकि द्रव्य की सर्वथा उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। क्यों आता है विरोध? हाँ, द्रव्य सत है वो अस्तित्व है ना, हम अपनी भाषा में कहेंगे अस्तित्व गुण है, वो तो है उसमें, कब से है वो गुण? अनादि से है, तो द्रव्य का कभी नाश भी नहीं होता और वो किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, सभी द्रव्य है और है। तो कहते हैं क्योंकि द्रव्य की सर्वथा उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, यदि कहा जाए कि जीव का द्रव्यपना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सो भी कहना ठीक नहीं है, यानी जीव ये द्रव्य है ये बात ही नहीं सिद्ध होती। तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्यम अवस्था में द्रव्यत्व के अविनाभावी उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रिलक्षणत्व की युगपद उपलब्धि होने से जीव में द्रव्यपना सिद्ध ही है। जीव में उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी, वो चलती है और वो हमें जानने में आती है। मध्यम अवस्था क्या लिखा है बस देखते हैं।
आप जब तक बोलेंगे मैं एक बात पूछूंगा, यहाँ 35 नंबर के बाद दूसरी लाइन जो है 48 पेज पे, क्योंकि द्रव्य की सर्वथा उत्पत्ति मानने में, तो सर्वथा उत्पत्ति यानी कथंचित उत्पत्ति तो होती है, ऐसा होगा ना?
मध्यम अवस्था ने जवानी आगे लिखा है, हम विशेषार्थ पढ़ेंगे ना, इसकी ख्याल है। हाँ देखो, चार्वाक अजीव से जीव की उत्पत्ति मानता है, चार्वाक नाम का एक मत है, उसका कहना है आद्य चैतन्य पृथ्वी, वो प्रू बराबर है क्या, पृथ्वी दिख रहा है, आद्य यानी शुरुआत चैतन्य की, आद्य चैतन्य पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है, पृथ्वी अग्नि वायु और जल, ये आकाश नहीं लिया इन्होंने, उसको भी मानने वाले है कोई। अनंतर मरण तक चैतन्य की धारा प्रवाहित होती रहती है, यानी जब आद्य चैतन्य जो जन्मा तो पृथ्वी आदि इन चारों से वो उत्पन्न हुआ, बाद में मरण तक वो चैतन्य की धारा चलती रहती है, और इसीलिए उसने परलोक आदि का भी निषेध किया है, यानी वो बस यही है जीवन, इसके बाद मरण के बाद कोई कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। आद्य ने आदि, आदि का प्रथम शुरू, यानी शुरू में जन्म हुआ है ने क्या हुआ, तो शुरू में वो आद्य और अंत ने वो मरण और मध्य ने जवानी, एक बार शुरू होने के बाद जो मध्यम कहते हैं, यानी पहले जन्मा है अभी बीच वाला काल और फिर मरेगा। नहीं, आद्य ने आदि हुई ना उसकी, आद्य ने शुरुआत हुई, चैतन्य की शुरुआत कैसी हुई, ये चार्वाक का मत है, तो ये पृथ्वी आदि चार से हुई और फिर जब मरेगा तो विनाश ही हो जाएगा, ये परलोक वगैरह कुछ है ही नहीं है, इसीलिए वो कहते ना खाओ पियो मौज करो ऐसा। हाँ हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, नहीं समझे, ऋण यानी कर्जा निकाल कर घृत यानी घी पीना चाहिए ऐसा, यानी खाओ पियो मौज करो बाद में कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाला है चार्वाक मत। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है, मरुत कहते ना वो, और आकाश के साथ वो पांच महाभूत भी कहते हैं। पर विचार करने पर, यानी उन्होंने परलोक का विषय निषेध किया, परंतु विचार करने पर उसका यह कथन युक्तियुक्त प्रतिभासित नहीं होता, यानी उयुक्ति से वो ठीक नहीं प्रतिभाषित होता, क्योंकि जिस प्रकार मध्यम अवस्था के अर्थात जवानी के चैतन्य में अनंतर पूर्ववर्ती बचपन के, वो बचपन हुआ है, बचपन के चैतन्य का विनाश और विनाश हुआ, विनाश वहां भी करना चाहिए, जहां ब चाहिए वहां व करते हैं, जवानी के चैतन्य का उत्पाद और चैतन्य सामान्य की स्थिति, इस प्रकार उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप त्रिलक्षणत्व की एक साथ उपलब्धि होती है। उसी प्रकार क्या कहते हैं, जब जवान है तो अभी बचपन नहीं है ना, तो उन्होंने तो चार्वाक ने क्या किया कि वो तो चैतन्य उत्पन्न हुआ, परंतु जो बचपन का चैतन्य था वो अभी नहीं रहा, अब जवानी का चैतन्य है, ये उसका उत्पाद है और उसका व्यय है, और फिर चैतन्य सामान्य की कंटिन्यूटी है, वो तो ध्रुव रूप है। उसी प्रकार जन्म के प्रथम समय का चैतन्य भी त्रिलक्षणात्मक ही सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथम चैतन्य को त्रिलक्षणात्मक माने बिना मध्यम अवस्था के चैतन्य के समान उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्या कहते हैं यहां, जो कहते हैं कि चार्वाक ने जो बताया कि वो जन्मा तभी चैतन्य था, फिर जवान हुआ और फिर मर गया, चैतन्य समाप्त हुआ, तो जवानी के चैतन्य में उत्पाद व्यय और ध्रुवता सिद्ध होती है कि नहीं होती, तो हाँ होती है। तो यदि जवानी के चैतन्य में त्रिलक्षणता है, कौन सी, जवानी के चैतन्य का उत्पाद, बचपन के चैतन्य का विनाश और चैतन्य सामान्य ध्रुव, तो पहले समय का जो चैतन्य है जन्म के समय का, उसमें भी तीन लक्षण सिद्ध होने ही चाहिए, नहीं तो बाद में वो तीन लक्षण कहां से आए। ये इसलिए कहते प्रथम चैतन्य को त्रिलक्षणात्मक माने बिना, ऊपर आद्य कहा था, आद्य चैतन्य और यहां प्रथम चैतन्य कहा, यानी जिस समय जन्मा उस समय का चैतन्य कहते हैं, उसको त्रिलक्षणात्मक माने बिना मध्यम अवस्था के चैतन्य के समान उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हो गई। जैसे मध्यम अवस्था के चैतन्य की उत्पत्ति हुई है और बचपन के चैतन्य का नाश हुआ है, वैसे जो आद्य चैतन्य है, पहले समय का चैतन्य, उसकी भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, तो उसमें भी ये तीनों ही लागू हो जाएगा, क्योंकि सर्वथा उत्पत्ति किसी चीज के होती नहीं है, सर्वथा असत में से सत की उत्पत्ति नहीं होती, कहा ना, तो कहते उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः जन्म के प्रथम क्षण के चैतन्य में भी जन्मांतर के अनंतर पूर्व चैतन्य विशेष का विनाश, जन्मांतर ने अन्य जन्म और अनंतर पूर्व ने पूर्व अवस्था का, पूर्व भव की बात है, यानी उसको हम कहेंगे ना इमीडिएट प्रायर, तो पूर्व अवस्था का जो अनंतर पूर्व चैतन्य विशेष का विनाश, चैतन्य विशेष को कहा क्योंकि अन्य भव चल रहा था वहां, जैसे मनुष्य पर्याय का पर्याय चल रही थी, अब देव में आया है, तो चैतन्य विशेष का विनाश हुआ, यहां देव रूप चैतन्य का उत्पाद हुआ। प्रथम समयवर्ती चैतन्य विशेष का उत्पाद और चैतन्य सामान्य की स्थिति मान लेना चाहिए। जब एक भव से दूसरे भव में जीव जाता है मरण के बाद, तो पूर्व का चैतन्य विशेष था उसका विनाश हुआ, नया जो चैतन्य विशेष है उसका उत्पाद हुआ, और चैतन्य सामान्य वही का वही रहा। अतः जीव की उत्पत्ति अजीव पूर्वक सिद्ध न होकर, यानी जीव की उत्पत्ति नई नहीं हुई है, वह अनादि से ही है, अजीव से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, जन्मांतर के चैतन्य पूर्वक ही सिद्ध होती है, इस तरह जीव स्वतंत्र द्रव्य है यह सिद्ध हो जाता है। हम तो मानते हैं ना, साइंटिस्ट लोगों ने भी नया जीव उत्पन्न किया, जीव की तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। शंका, इंद्रियों से जीव द्रव्य की उत्पत्ति मत हो, किंतु उनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो मान ही लेना चाहिए। शंकाकार होशियार है ना, भले जीव द्रव्य तो है परंतु इंद्रियों के द्वारा ज्ञान तो उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। समाधान, नहीं, क्योंकि जीव से अतिरिक्त ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान जीव का लक्षण है, वो जीव के अलावा अन्यत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मान लेने पर उससे जीव की उत्पत्ति का भी प्रसंग प्राप्त होता है। यदि इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है मानेंगे तो ज्ञान से जीव को एक दूसरे के बिना नहीं होता है, तो इंद्रियों से जीव भी उत्पन्न हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इंद्रियों से जीव की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो वो समाधान नहीं, क्योंकि अनेकांतात्मक जात्यंतर भाव को प्राप्त, जात्यंतर यानी अन्य जाति का भाव उसको प्राप्त और ज्ञान दर्शन लक्षण वाले जीव में एकांतवादियों के द्वारा माने हुए सर्वथा उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व का अभाव प्राप्त होता है। एकांतवादी जो है, जीव है कैसा तो अनेकांतात्मक है, जात्यंतर भाव है, अजीव से भिन्न जाति का भाव है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। और एकांतवादी कैसे मानते हैं, सर्वथा उत्पाद या सर्वथा, जैसे कोई क्षणिक ही मानते हैं और कोई बिना पर्याय वाला ऐसा सर्वथा कुटस्थ ही मानते हैं, तो ऐसे एकांतवादियों ने माने हुए जो लक्षण है उसका अभाव है। अर्थात जीव का न तो सर्वथा उत्पाद ही होता है, न सर्वथा विनाश ही होता है और न वह सर्वथा ध्रुव ही है। वो सर्वथा ध्रुव मानने वाला जो वैदिक मत है, सर्वथा विनाश मानने वाला क्षणिक मत बौद्धिक बौद्ध मत है, अतः उसकी इंद्रियों से उत्पत्ति मानना भी युक्त नहीं है। अतएव जीव द्रव्य अनेकांतात्मक, अनेक धर्मात्मक है ना, अनेकांतात्मक जात्यंतर भाव को प्राप्त और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा अवयव अवयवी नित्य अनित्य सामान्य विशेष एक अनेक विधि निषेध चेतन अचेतन आदि संबंधी विकल्प रूप चार महापातालों में पड़ जाने से क्या कहे, विकल्प रूपी महापाताल कहा, सकल प्रमाण स्वरूप जीव द्रव्य के अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। विशेषार्थ इसी को फिर समझाते, ये अच्छी बात है इन्होंने इतना विशेषार्थ लिखा है। जीव द्रव्य अनेकांतात्मक जात्यंतर भाव को प्राप्त और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, यदि उसे ऐसा न माना जाए तो उसे या तो अवयव रूप या अवयवी रूप या उभय रूप या अनुभय रूप, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प रूप मानना पड़ेगा। विकल्प है ना, ऑप्शंस यानी ना, हमें जाना है जयपुर तो आपके पास क्या विकल्प है, कौन कौन से ऑप्शंस है, आप ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, इसको विकल्प कहते हैं। तो ये जो चार ऑप्शंस है उसमें से किसी एक विकल्प रूप मानना पड़ेगा, पर विचार करने से इनमें से सर्वथा किसी एक विकल्प रूप जीव की सिद्धि नहीं होती है। वो कथनचित स्यात तो सिद्ध करता है, परंतु सर्वथा मानने में ये तो एकांतवाद हो जाता है। तो चार हो गए ना इसमें, अवयव और अवयवी कहा, तो सर्वथा अवयव रूप, सर्वथा अवयवी रूप, सर्वथा दोनों रूप या सर्वथा दोनों के अभाव रूप, ऐसे चार भंग चार हो सकते विकल्प। तो जीव की सिद्धि नहीं होती और जीव का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार नित्य अनित्य सामान्य विशेष एक अनेक विधि निषेध, ये विधि निषेध ये का अर्थ क्या है, नहीं प्रोसेस के अर्थ में विधि नहीं है यहां पर, निषेध का अर्थ मालूम है, निषेध करना यानी क्या, मना करना यानी, निषेध यानी नास्ति, विधि ने उसको, हाँ उसको एस्टैब्लिश करना वो है विधि, और निषेध करना है उसको रूल आउट करना वो है, हाँ अस्सी नास्ती, परंतु वो पद्धति है ना, कथन पद्धति है, विधि पूर्वक कथन करना है ना, ये चीज है यानी ये हम कहें ना ये हरे रंग की है और निषेध ये काला नहीं है, पीला नहीं है, सफेद नहीं है, ये निषेध हो गया, जो है उसको बताना वो विधि हो जाएगी, और जिस रूप नहीं है उसका कथन करेंगे तो निषेध हो जाएगा। अस्सी नास्ति हम कहेंगे ना उसको, हाँ अनेकांता तक मैंने किसी अपेक्षा, हम किसी अपेक्षा से किसी धर्म का होते ना, सर्वथा तो नहीं है, इसलिए अनेकांतात्मक कहा। अस्ति और नास्ति जो हम कहते हैं, अस्ति नास्ति दो धर्म है, कथनचित यानी वो स्यात, किसी अपेक्षा है वो अपेक्षा बताकर हम अस्ति धर्म को भी सिद्ध करते हैं और अपेक्षा बताकर नास्ति धर्म को भी सिद्ध करते हैं, नित्य को भी सिद्ध करेंगे और अनित्य को भी सिद्ध करेंगे। जैसे द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा देखोगे तो द्रव्य ही अनित्य है, द्रव्य हो अकेले पर्याय अनित्य की बात नहीं, द्रव्य ही पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अनित्य है। तो ये जो अनेकांतात्मक पना है वो लक्षण है द्रव्य का, परंतु अन्य मति एकांत मति सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानते हैं या कोई सर्वथा उभय रूप मानते हैं, वो अलग अलग, परंतु ये कथनचित की बात है, किसी अपेक्षा से है वो अनेकांतात्मक। तो जिन धर्म की विशेषता है ना, ये जात्यंतर भाव ने अन्य जाति का भाव, प्रत्येक द्रव्य का है, चेतन की जाति अलग है, अचेतन की जाति अलग है, ये जात्यंतर भाव। और ज्ञान दर्शन वाला है तो ये चार विकल्प रूप महापाताल कहे ना, विकल्प रूप चार महापाताल यानी वो सर्वथा एकांतवादी वाले, सर्वथा कहो या एकांत वाली, कैसे चार ऑप्शंस होते हैं उसमें, चार भंग पड़ते हैं, चार विकल्प पड़ते हैं, यानी प्रत्येक जो धर्म युगल है उसमें वो चार चार हम विकल्प देख सकते हैं। तो विकल्पों में डूब जाना है ना, वो एकांत किसी एक विकल्प का आग्रह धरना। देखो फिर पढ़ते हैं, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, एक अनेक, विधि निषेध और चेतन अचेतन, इनमें भी उक्त प्रकार से होने वाले चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प रूप जीव द्रव्य को मानने पर उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः यहाँ पर जीव द्रव्य का जो स्वरूप बतलाया गया है उस रूप ही जीव द्रव्य को मानना चाहिए। ये इंद्रियों से मति ज्ञान के ऊपर से और केवल ज्ञान के ऊपर से ये सब बातें आई है, ज्ञान प्रमाण में से ये बातें निकली है ना सब, मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान, ये बात हुई थी वहां पर। और अंश ने अवयव के द्वारा पूरा अवयवी जान सकते हैं, उसका निर्णय कर सकते हैं, ये बात यहाँ चल रही थी और उसके लिए इतनी चर्चा हो गई। अब कहते हैं यदि कहा जाए जीव द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से मति ज्ञान आदि रूप परिणमन करता है, इसलिए उसके इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में केवल ज्ञानपना अर्थात असहाय ज्ञानपना नहीं बन सकता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। यानी भले इंद्रियों की अपेक्षा हो तो भी उसमें केवल ज्ञानपना नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। अब उसको बताएंगे, क्योंकि ऐसा मानने पर यद्यपि केवल ज्ञान समस्त पर्याय रूप है तो भी वह समस्त पदार्थों की अपेक्षा से परिणमन करता है, अतः उसे भी अकेवल ज्ञानत्व का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। समस्त पर्याय रूप ने सभी पर्यायों को जानता है ना, सभी द्रव्यों को जानता है, समस्त पदार्थों की अपेक्षा से परिणमन करता है। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ तो इंद्रियों की अपेक्षा आई, केवल ज्ञान केवल ने बिना किसी के अपेक्षा से असहाय, उसको केवल कहते हैं। तो मति ज्ञान को भी केवल ज्ञान पना है, परंतु वहां कोई कहेगा अरे इंद्रियों की तो अपेक्षा है, वो असहाय ज्ञान कहाँ है, वो केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान सर्वज्ञ की वो बात मत सोचो अभी। असहाय ज्ञान, यानी ज्ञान ज्ञान से होता है क्या इंद्रियों से होता है, ये अपेक्षा लगाओ। तो असहाय पने की अपेक्षा वो भी केवल ज्ञान के समान है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कहते हैं जो केवल ज्ञान है, जो सभी पदार्थों को जानता है, उनको भी सभी पदार्थों की अपेक्षा तो आ गई। यहाँ जैसे इंद्रियों की अपेक्षा है इसके लिए उसको असहाय मत मानो, ऐसा किसी ने कहा। तो वहां कहते वो सर्व द्रव्य पर्याय को जानता है, तो उनको भी पर की अपेक्षा है, तो उसको भी असहाय मत मानो। समझ में है ना ये दलील क्या करना चाहते हैं? यदि कहा जाए, ये आगे का पैराग्राफ, कि जीव द्रव्य परमाणु आदि सूक्ष्म अर्थों को, मेरु आदि व्यवहित अर्थों को और राम आदि विप्रकृष्ट अर्थों को, हमने इसको क्या दूरवर्ती और अंतरित ऐसे शब्द आए थे। दूरवर्ती यानी दूर क्षेत्र में स्थित, या काल की अपेक्षा है क्षेत्र की अपेक्षा, दोनों ही उलट सुलट दोनों अपेक्षा से आते। एक तो हमने हमने तो स्वर्ग नरक तो यहाँ से हमें पता ही नहीं है, है कि नहीं है, तो मति ज्ञान के द्वारा तो उसको नहीं जान रहे हम। और जो दूर पहले हो चुके हैं राम पांडव आदि, उनको भी नहीं जान रहे हैं, इसलिए कहते परमाणु आदि को भी हम मति ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते, भले अवधि ज्ञान ही जानेंगे। तो कहते जीव द्रव्य परमाणु आदि सूक्ष्म अर्थों को, मेरु आदि व्यवहित अर्थों को और राम आदि विप्रकृष्ट अर्थों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए वह केवल ज्ञान रूप नहीं हो सकता। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी जीव द्रव्य सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थों में भी युगपत प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाता है। ये तो केवल ज्ञान है, वो इन सभी में युगपत प्रवृत्ति होती है उनके, अनादि से अनंत काल तक के सभी को जानते हैं, सभी क्षेत्रों को जानते हैं, पूरे लोकाकाश के आलोकाकाश को भी पूर्ण रूप से जानते हैं। व्यवहित होना यानी उसको दूर है ना, यहां से दिखाई नहीं देते, हाँ दूरवर्ती है। और अभी प्रकृष्ट ने अभी वर्तमान में नहीं है, हो चुके हैं। यानी जो वर्तमान में नहीं उसको यहां भी प्रकृष्ट कहा। और व्यवहित है यानी दूर स्थित है ना, हाँ। देखो ये 50 पेज पर अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, चार लाइन हो गई। यानी जीव द्रव्य सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थों में भी युगपत प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाता है। हम जो भाषा सीखे ना, यानी जीव द्रव्य सूक्ष्म पदार्थों को, दूरवर्ती पदार्थों को और अंतरित पदार्थों को भी एक साथ जानता है। यदि कहा जाए कि समुदाय साध्य कार्य उसके एक अंश में नहीं दिखाई देता है, अर्थात समुदाय जो कार्य कर सकता है वह कार्य उसका एक अंश नहीं कर सकता है, इसलिए वह ज्ञान विशेष उसका अंश नहीं रहता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर हाथ का कार्य नहीं कर सकने वाली हाथ की एक अंगुली को भी हाथ का अवयव नहीं माना जा सकेगा। क्या कहते हैं, एक जो अवयव है, जो अंश है, वो पूरे समुदाय का कार्य नहीं कर सकता, ऐसा अगर कोई कहता है। ये यहाँ मति ज्ञान और केवल ज्ञान ऊपर से बात निकली थी ना, तो उसके लिए समझाते हैं कि जो एक अंश है वो पूरे का कार्य नहीं कर सकता। यदि ऐसा माना जाएंगे तो उंगली जो है वो हाथ नहीं है, उसका अवयव है। तो कहते हैं कि उंगली है वो हाथ का कार्य नहीं सकती है, कर नहीं सकती, इसलिए हाथ की एक उंगली को भी हाथ का अवयव नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा कोई दलील करे तो ऐसा है नहीं है, उंगली तो हाथ का ही अवयव है ना, हाथ अवयव है तो उसका, और वो उसका उपांग है, अंग है तो उसका उपांग है, तो हाथ का वो अवयव कहलाता है। इसलिए केवल ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है यह निश्चित हो जाता है। ये बात देखो कितने पेजों से यही बात चल रही है, ये जरा निकालना। ये मति ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान जो प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन ज्ञान, उसके द्वारा केवल ज्ञान सिद्ध होता है, ये बात चल रही है यहाँ पर। इतने जो हम बातें देखी हमने, न्याय नहीं समझ में आता है। देखो 40 पृष्ठ से ये बात चल रही है, नीचे का पैराग्राफ जहां 31 नंबर डाला था, यदि कहा जाए कि केवल ज्ञान असिद्ध है, मिला नीचे का 31 नंबर का, सो भी बात नहीं, नहीं केवल ज्ञान भी सिद्ध है, तो जब होगा तब सिद्ध होगा ना। तो कहते स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा केवल ज्ञान के अंश रूप ज्ञान की निर्बाध रूप से उपलब्धि होती है, वो केवल ज्ञान के अंश रूप ज्ञान है कहते हैं। फिर अवयव और अवयवी की बात उन्होंने छेड़ी थी, अर्थात मति ज्ञान आदिक आदिक सभी लेने केवल ज्ञान के अंश रूप है और उनकी उपलब्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सभी को होती है, अतः केवल ज्ञान के अंश रूप अवयव के प्रत्यक्ष होने पर, उसका अंश रूप ये जो मति ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष होने पर केवल ज्ञान रूप अवयवी को परोक्ष कहना युक्त नहीं है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसको भी प्रत्यक्ष जाना ऐसा कहेंगे। यही बात यह फिर दोबारा उठाई। देखो हाँ, केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, केवल ज्ञान असिद्ध नहीं है, कोई जीव केवल ज्ञानी को ही नहीं मानते हैं, केवल ज्ञान है ही नहीं कहते हैं, तो केवल ज्ञान की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होती है, ये बात यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। आत्मानुभव के द्वारा केवल ज्ञान की सिद्धि की उन्होंने, उन्होंने कितने उदाहरण दिए ना, खंबे को हमने, खंबे की एक साइड देखी और पूरा खंबा जाना, घट है उसकी एक साइड देखी उस पूरा घट जाना। हम ऐसा नहीं कहते हमने घट के अवयव को देखा, हमने घट देखा कहते हैं। तो ऐसे ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जाना अपने आप को, तो उसने केवल ज्ञान को भी जाना, ऐसा कहते हैं वहां पर, पूरा अवयव जान लिया। हाँ अंश रूप अवयव कौन है? हाँ वो भी प्रत्यक्ष है, ये सिद्ध होती है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है, यानी केवल ज्ञान सिद्ध होता है, ये बात बताइए, केवल ज्ञान सिद्ध होगा। हमने दूसरी भाषा में स्वानुभूति से उसको सिद्ध किया, नहीं नहीं उसकी बात नहीं यहाँ पर, ये स्वपर की बात यहाँ नहीं ली है, वो विषय यहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल जानता है, स्व और पर को जानने की शक्ति है ज्ञान की, ज्ञान ज्ञान रूप अपने को भी, अपने को ज्ञान रूप जान रहा है और पदर पदार्थों को भी जान रहा है। तो आप जान रहे हैं ना, ये पुद्गल है, ये पेंसिल है, जानी किसने जानी? आपने जाने, तो आपने अपने को भी जाना और पेंसिल को भी जाना। क्योंकि उसी समय हम कहते हैं मैं नहीं जानी, उसके बारे में कोई अपने को संदेह नहीं है, मैं नहीं जानी, मैंने देखा, मैंने देखा, किसको देखा? मैंने मैंने सूरज को देखा, अभी उग गया है, तो सूरज को भी देखा और मैंने देखा, मुझे दिखा, तो ये भी सिद्ध हुआ ना। हाँ देखो ये हम यहाँ 50 पेज पर और ये 40 पेज का हमने उसमें रेफरेंस भी देखा था, यहाँ 36 के अंत में क्या लिखा, इसलिए केवल ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है यह निश्चित हो जाता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान की सिद्धि होती है, ये बात यहाँ सिद्ध हो गई। इस ज्ञान प्रमाण का, अब ये ज्ञान प्रमाण की बात चली आई थी, हमने अलग अलग प्रमाण देखे थे, उसमें से सातवां प्रमाण ज्ञान प्रमाण था। पहले कौन से देखे याद है ना, नाम स्थापना, फिर संख्या प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और ज्ञान प्रमाण। तो कहते इस ज्ञान प्रमाण का वृद्धि और हानि के द्वारा जो तरतम भाव होता है, तरतम यानी कम ज्यादा, ही नाधिक, तर और तम, गुड बेटर बेस्ट कहते ना, तो वो तरतम भाव या हीनाधिक भाव को भी तरतम कहते हैं। वह निष्कारण तो हो नहीं सकता, निष्कारण बिना कारण के तो नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्धि हानि का कोई तो कारण होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रमाण में वृद्धि और हानि से होने वाले तरतम भाव को निष्कारण मान लेने पर, यानी बिना वजह से मान लेने पर, वृद्धि और हानि रूप कार्य का ही अभाव हो जाता है, क्योंकि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं रहेगा। और ऐसी अवस्था में वृद्धि और हानि के न होने से ज्ञान के एक रूप से स्थित रहने का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि कहा जाए कि ज्ञान एक रूप से अवस्थित रहता है तो रहने दो, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक रूप से अवस्थित ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता है। अतः ज्ञान प्रमाण में होने वाली वृद्धि और हानि सकारण होनी चाहिए। ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं, वो कारण सहित है। इस प्रकार वृद्धि और हानि के सकारण सिद्ध हो जाने पर उसमें जो हानि के तरतम भाव का कारण है वह आवरण कर्म है। यह सिद्ध हो जाता है। क्या कहते हैं, ज्ञान में हानि हो रही ना, अभी हानि में भी तरतमता है, पूरा केवल ज्ञान तो अभी है ही नहीं पाया जाता, तो हमारे ज्ञान हीनाधिक पाया जाता है, तो वहां आवरण वाला कर्म होना चाहिए। तथा आवरण उस पदार्थ के बिना नहीं बनता जिसका कि आवरण किया जाता है। आवरण के द्वारा जिसको आवृत किया जाता है उस पदार्थ की सिद्धि कर रहे। इसलिए केवल ज्ञान के प्रकट अंशों के अतिरिक्त शेष अवयवों का अस्तित्व जाना जाता है। यानी उसके जो अन्य अवयव है उसका भी अस्तित्व जाना जाता है। अतः आवृत और अनावृत अवयव वाला सर्व पर्याय रूप केवल ज्ञान, जिसके की प्रकट अंशों के अतिरिक्त शेष अवयव आवृत है, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अनुमान के द्वारा सिद्ध है। अर्थात उसके प्रकट अंश स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है और आवृत अंश अनुमान के द्वारा सिद्ध है। केवल ज्ञान का जो प्रकट अंश है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जिसको हम कहते हैं ना आत्मानुभूति के द्वारा सिद्ध है, और जो आवृत अंश है जो अभी प्रकट ही नहीं है वो अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। ये केवल ज्ञान की सिद्धि की बात चल रही है। तथा यदि कर्मों को अहेतुक माना जाएगा तो उनका विनाश बन नहीं सकता। इस अन्यथा अनुपपत्ति के बल से, अन्यथा अनुपपत्ति ने नॉट अदरवाइज पॉसिबल, सोफे भाषा, कर्मों को यदि अहेतुक माना जाए, बिना वजह से माना जाएंगे, तो उनका विनाश बन नहीं सकता, तो बने रहेंगे, उसको हेतु ही नहीं है। तो कहते हैं इस बल से क्या होता है, कर्म भी सहेतुक है यह जाना जाता है। पहले मैं क्या सिद्ध किया था, ज्ञान की हीनाधिकता होती है तो उसमें भी कारण होना चाहिए, तो कर्म को सिद्ध किया, कर्म के आवरण को। अब यहां कहते हैं कर्म है वो भी स्वहेतुक है, स्वहेतु बिना हेतु से वो नहीं है, वहां पर उसका भी कारण है। यदि कहा जाए कि कर्मों का विनाश किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, कहेंगे कर्मों का पूरा विनाश होता है ये बात ही सिद्ध नहीं होती, जाओ तो कहते ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों के कार्यभूत बाल यौवन और राग आदि पर्यायों का विनाश कर्मों का विनाश हुए बिना बन नहीं सकता, इसलिए कर्मों का विनाश सिद्ध है। शंका, कर्म कृत्रिम होता है ऐसा क्यों नहीं है? वो अनादि तो है परंतु वो अकृत्रिम है, ऐसा उसके कोई कारण नहीं है ऐसा अगर मानेंगे तो? कहते नहीं, क्योंकि अकृत्रिम पदार्थ का विनाश नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे हमने द्रव्यों को अकृत्रिम कहा है वैसे कहते कर्म को भी अकृत्रिम स्वीकार करो तो उसका नाश नहीं हो सकता, इसलिए कर्म को कृत्रिम ही होना चाहिए। अब फिर आगे, कृत्रिम होते हुए भी कर्म मूर्त ही है, पुद्गल है ना वे? शंका, यह कैसे जाना जाता है कि कर्म मूर्त ही है? यदि कर्म को मूर्त न माना जाए तो मूर्त औषधि के संबंध से परिणामांतर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्या कहते हैं, रोग की अवस्था थी और औषधि का सेवन किया तो रोग दूर हुआ कि नहीं हुआ? रोग क्यों हुआ था? कर्म का उदय था ना वहां पर। देखो क्या कहते, अर्थात रुग्णावस्था में औषधि का सेवन करने से रोग के कारणभूत कर्मों में जो उपशांति वगैरह देखी जाती है वह नहीं बन सकती। हाँ, इससे मालूम पड़ता है कि कर्म मूर्त ही है। ये आपका प्रश्न आगे लिया, यदि कहा जाए कि मूर्त औषधि के संबंध से रोग के कारणभूत कर्म में परिणामांतर यानी कर्म का परिणाम बदल जाना, उसको कर्म का परिणामांतर कहा, कर्म में परिणामांतर की प्राप्ति किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परिणामांतर की प्राप्ति के बिना ज्वर कुष्ठ और क्षय आदि रोगों का विनाश नहीं बन सकता, इसलिए कर्म में परिणामांतर की प्राप्ति होती है यह सिद्ध हो जाता है। ओ, एक कर्म में भी कुष्ठ रोग, लेप्रसी, कुष्ठ नहीं, वो नहीं, वो कोड है और वो भी सफेद, यानी वो सफेद दाग है, यानी दवाई खाने से कर्म में चेंज हो जाता है कहते हैं ना, निमित्त की भाषा है वो, यानी परिणामांतर पाया जाता है और नहीं वो असाधा तीव्र हो तो वो दवाई की भी एलर्जी आ जाए, वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं मर जाए जी, देखते हैं ना कि नहीं देखते और बढ़ गया, ऐसा भी होता है ना, दवा खाने से और भी बढ़ जाता है, उल्टी सुलटी दवा हो जाती है, डायग्नोसिस गलत होता है, क्या क्या होता है। हम देखते हैं ना, वो पहले बीच में आए थे ना पेपर में, राइट साइड का एम्पिटेशन करना था लेग का तो लेफ्ट साइड का कर दिया, हमारे राजन भाई ने वो पढ़ लिया इसलिए हॉस्पिटल में जाने से इनकार कर दिया इस प्रकार पूर्व में जो कर्म सिद्ध कर आए हैं वह जीव से संबद्ध ही है, ये कर्मों की बात, पहले मूर्त है ये सिद्ध किया और वो जीव से संबद्ध है, बंधे हुए है, संबद्ध है ऐसे सिद्ध हुआ। कर्म जीव से संबद्ध ही है यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, यदि कर्म को जीव से संबद्ध न माना जाए तो कर्म के कार्य रूप मूर्त शरीर से जीव का संबंध नहीं बन सकता। यानी कर्म जीव से संबद्ध है, जीव के प्रदेशों में वो बंधे हुए हैं, तभी वो कर्म का कार्य है, वो शरीर की रचना आदि। तो शरीर से तो जीव बंधा, ये तो सिद्ध होता है, ये तो हमें मान्य है, परंतु कर्म है कि नहीं पता नहीं है। और पर ये कार्य, ये शरीर जो है वो कर्म का कार्य है। जीव ने कर्म का कार्य कहां माना, उसको भिन्न भी कहां, मैं तो शरीर रूप है ऐसा ही मान लिया उसने, नहीं बन सकता। इस अन्यथा अनुपपत्ति से प्रतीत होता है कि कर्म जीव से संबद्ध ही है। देखो कर्म बंधा हुआ है, इसी किसी अपेक्षा से उसको पुद्गल, ये बाद में बताई थी ना उन्होंने, कथनचित मूर्त भी कहते, पुद्गल भी कहते उसको, जीव को संसार अवस्था में। कल बात हमने पढ़ी थी 38 पृष्ठ पर अंतिम लाइन, मिला, कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीव, यानी जीव को कथनचित पुद्गल कहा, मिला कि नहीं, अंतिम लाइन में लिखा था। हाँ हाँ, तो ये कर्म जीव से अनादि से बंधे हुए है, और इसीलिए देखो सम्यक तो मार्गणा में जीव कांड में ये बात बताइए, जीव के भी दो भेद किए, रूपी और अरूपी। आप कहेंगे तो जीव का लक्षण अरूपी है, उसको रूपी कैसे कहते हैं, तो संसार अवस्था में उसको रूपी कहा है, क्योंकि कर्मों का संबंध हमेशा ही है ना, ऐसा नहीं कि कभी कभी है और कभी नहीं है, इसलिए उसको उस अपेक्षा से कथनचित रूपी भी कहते हैं। शंका, जीव कर्मों से असंबद्ध है ऐसा क्यों नहीं माना जाता? नहीं, क्योंकि यदि कर्मों से जीव को असंबद्ध माना जावे तो कर्मों से जुदा रहने के कारण अमूर्तत्व को प्राप्त हुए जीव का मूर्त शरीर और औषधि के साथ संबंध नहीं बन सकता है। इसलिए जीव कर्मों से संबद्ध ही है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो ये औषधि की जो बात है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म का उदय है और उसको निमित्तभूत बाह्य कोई अन्य भी पदार्थ पाए जाते हैं, उसको कर्म का नोकर्म कहते हैं। ये याद है आपको, कभी पढ़ा है सुना है, हमने उसको एजेंट कहा था, कर्म का एजेंट। जैसे अभी ज्ञान की हीनता होनी है, ज्ञानावरण कर्म का, तो बाह्य में क्या है, तो एनेस्थेसिया दिया है, मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया है, तो ये कर्म की ऐसी अवस्था होनी है, जीव की होनी है, तो उसमें निमित्त कर्म, और कर्म की अवस्था होती है तो उसके लिए बाह्य में कोई अन्य कारण भी पाया जाता है, तो वहां किसी ने एनेस्थेसिया दिया, तो ये कर्म का नोकर्म कहने में आता है। अभी साता वेदनीय असाता वेदनीय, वो तो वेदनीय का कार्य क्या है, वेदन करना सुख या दुख का, तो उसके निमित्तभूत अन्य सामग्री, बाह्य सामग्री है ना, तो उसको लक्ष्य करके जीव सुख दुख की कल्पना कर लेता है। वेदनी इटसेल्फ का कार्य क्या है, सुखी दुखी की बात, परंतु ये बाह्य संयोगों में उसको अनुकूलता प्रतिकूलता जो उसके मोहनी के निमित्त से मान लेता है, तो बाह्य की जो सामग्री है उसको भी निमित्तपने का आरोप आता है, या ऐसा भी कहते हैं साता के कारण ये सामग्री मिले, ऐसा भी कहने में आता है। ये तो उपचार का कथन है। तो ये जो बाह्य अन्य सामग्री है, तो ये अंतरंग में जो कर्मों की अवस्था बननी है उसके लिए वो निमित्तभूत है, तो ऐसे यहां लेना, वो मूर्त औषधि के कारण कर्मों की भी अवस्थांतर हो गई वहां पर, परिणामांतर का ना अभी यहां पर। हाँ, देखो आगे लास्ट पैराग्राफ, शरीर आदि के साथ जीव का संबंध नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के छेदे जाने पर जीव को दुख की उपलब्धि होती है, ब करना उपलब्धि होती है, इसलिए शरीर के साथ जीव का संबंध सिद्ध हो जाता है। यदि कहा जाए अन्य के छेदे जाने पर उससे भिन्न दूसरे के दुख उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, नहीं समझा, ये बच्चे को लेकर माँ आती है ना दवा खाने में, तो बच्चे को इंजेक्शन देने लगते हैं, तो माँ को भी फेंट आती है, या उसको कोई मान लेते कोई इंजुरी है, कोई पस हुआ है और उसको थोड़ा छेद देते हैं, तो यहाँ पहले तो माँ को संभालना पड़ता है, तो ये अन्य के छेदे जाने पर भी दुख होता दिखाई देता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर अव्यवस्था का प्रसंग प्राप्त होता है। मतलब ये दुख का वेदन जो है वो तो मानसिक है, उसकी कल्पना की बात, यहाँ शरीर का छेदे जाने पर जो यहाँ ज्ञान होगा उसका वेदन होगा उसकी बात चल रही है। यथा यदि जीव और शरीर में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध नहीं माना जाएगा तो जीव के गमन करने पर शरीर को गमन नहीं करना चाहिए। तो फास्ट दौड़ने लगे तो क्या होगा? शरीर रह जाएगा पीछे और जीव रह जाएगा आगे। कोई बहुत जाड़ा है और उसको फास्ट दौड़ना है तो शरीर को छोड़कर दौड़ के आएगा कि नहीं आएगा? तो उनका एक क्षेत्र रूप संबंध है जब तक वो है उसी प्रकार। ये क्या कह, फिर पढ़ती हूँ मैं इसको। यदि जीव और शरीर में एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध नहीं माना जाएगा तो जीव के गमन करने पर शरीर को गमन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार औषधि का पीना जीव के आरोग्य का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि औषधि शरीर के द्वारा पी जाती है, क्योंकि शरीर में ही तो डालते हैं ना औषधि, और यहाँ जीव को सुख का अनुभव होने लगता है। यदि कहा जाए अन्य के द्वारा पी गई औषधि उससे असंबद्ध दूसरे के आरोग्य को उत्पन्न कर देती है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कहीं भी उपलब्धि नहीं होती। हमने दवा पी और दूसरा कोई हमारा रिश्तेदार ठीक हो गया तो अच्छा होता ना? उसी प्रकार ऐसा तो हम कहते ना, बच्चे ने खा लिया हाँ मेरा पेट भर गया, ये सारी कल्पना है मानसिक। उसी प्रकार जीव के रुष्ट होने पर जीव और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये बात सिद्ध करनी है। शरीर जीव का कुछ करता है और जीव शरीर का कुछ करता है, ये बात यहाँ नहीं सिद्ध करनी है। दोनों ही एक क्षेत्रावगाह रूप से है और उसमें निमित्त नैमित्तिक पना बनता है, ये बात यहाँ बताए। इसलिए कहते जीव के रुष्ट होने पर, रुष्ट ने क्रोधित होना है, शरीर में कंप, दाह, गले का सूखना, आंखों का लाल होना, भौं का चढ़ना, रोमांच का होना, पसीना आना आदि कार्य नहीं होने चाहिए। भौंएं ये भौंएं आईब्रोज, क्रोधी होता है तो ऐसा हो जाता ना एकदम, क्योंकि शरीर से जीव असंबद्ध है। यदि असंबद्ध माने तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्रोध तो जीव को आया है, ये शरीर में इतने साइन सिम्टम्स क्यों हुए? जैसे यहाँ जीव को हंसी आई है तो ये मुंह का फूलना या जो कुछ लाल होना तथा जीव की इच्छा से शरीर का गमन और आगमन तथा हाथ पैर सिर और अंगुलियों का संचालन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव से शरीर का संबंध नहीं है। यदि संबंध नहीं मानेंगे तो इसको जीव को इच्छा हुई और यहाँ उसका निमित्त से वो शरीर की हिलना डुलना आदि अवस्थाएं पाए जाते हैं, तथा संपूर्ण जीवों के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत विरति और सम्यक्त्व आदि हो जाने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार सिद्ध जीव कर्म और शरीर से पृथक है, उसी प्रकार संपूर्ण जीव भी कर्म और शरीर से पृथक मान लिए गए हैं। जीव कर्म से भी असंबद्ध है, बंधे हुए नहीं है, और शरीर से भी बंधे हुए नहीं है ऐसा मानेंगे तो, जैसे सिद्धों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये सारी अनंत चतुष्टय वगैरह सम्यक वगैरह पाया जाता है, वैसे सभी संपूर्ण सभी जीवों में पाया जाना चाहिए। परंतु ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ कर्म से बंधे हुए हैं। अथवा यदि संसारी जीवों के शरीर और कर्मों से पृथकभूत रहते हुए भी अनंत ज्ञानादि गुण नहीं पाए जाते हैं तो सिद्धों के भी नहीं होने चाहिए। यानी संसारी जीवों कर्मों से पृथकभूत रहते हुए उनके अनंत ज्ञान नहीं है ऐसा मानेंगे तो सिद्धों के क्यों हुआ? ये दलील समझ में आती है ना, न्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कहा जाए कि अनंत ज्ञानादि गुण सिद्धों के नहीं होते हैं तो मत हो, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं माना गया है। अतः इस प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिए जीव से कर्म अभिन्न अर्थात एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त है ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। फिर शंका, अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्मों का संबंध कैसे हो सकता है? ये यहाँ प्रश्न चिन्ह चाहिए, ऊपर दिया है उन्होंने कथम संबंधो। यही प्रश्न मोक्षमार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में भी लिया है पंडित टोडरमल जी ने। समाधान, नहीं, क्योंकि जीव और कर्मों का अनादि संबंध स्वीकार किया गया है। यदि सादि बंध स्वीकार किया गया होता तो पूर्वोक्त दोष आता, यानी जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए अवस्थाएं पाए जाएंगी। ये कथनचित मूर्तत्व है ना वहां पर, और नए कर्म आकर उन कर्मों के साथ जुड़ते रहते हैं, तो अनादि से संबंध है ही है, और नए आने वालों का भी संबंध हो जाता है। यदि पहले सिद्ध समान शुद्ध था जीव और बाद में कर्म आए, तो ये सवाल खड़ा होता कि शुद्ध था तो ये अरूपी था जीव, तो उसके साथ रूपी यानी अमूर्त के साथ मूर्त का बंध कैसे हुआ? परंतु अनादि से वो बंधा हुआ ही पाया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बंधा था और बाद में बंधा है। शंका, जीव और कर्मों का अनादिकालीन बंध है यह कैसे जाना जाता है? उसका समाधान, यदि जीव का कर्मों के साथ अनादिकालीन बंध स्वीकार न किया जावे तो वर्तमान काल में जो जीव और कर्मों का बंध उपलब्ध होता है वह बन नहीं सकता। इस अन्यथा अनुपपत्ति से जीव और कर्मों का अनादिकाल से बंध है यह जाना जाता है। फिर शंका, जीव मूर्त है ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता? नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर प्रमाण जीव को कुल्हाड़ी से काटने पर या तो बहुत जीवों का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, यदि जीव को मूर्त मानेंगे तो जैसे लकड़ी के टुकड़े करते हैं ना, ये स्थूल है मूर्त है दो टुकड़े के, तो दो अलग अलग हो जावे तो दो स्कंद हो जाते हैं, तो ऐसे जीव को भी कुल्हाड़ी से काटने पर दो जीव हो जाएंगे। या तो बहुत जीवों का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा या जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए जीव मूर्त न होकर अमूर्त है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। आगे 54 पृष्ठ, यदि कहा दो जीव नहीं होते, अर्थवम को काटने पर दो जीव कहाँ होते हैं? वो दोनों में आत्म प्रदेश संबंध फैले रहते हैं, तो दोनों का कुछ मूवमेंट होती है कुछ काल तक, दोनों ओर से उसको दो जीव कहाँ होते हैं? दो अर्थवम नहीं होते उसमें से, आपने देखे दो अर्थवम होते? हाँ, वो दोनों ओर से चलते हुए दिखाई देते हैं, उनकी मूवमेंट है। आप एक बाजू से उसको ये ऐसे जा रहा है उसको यहाँ से अतरा, तो दूसरे बाजू से उसका गमन चालू हो जाता है, वो बात नहीं है। या जो छिपकली है उसकी पूंछ टूटती है तो वो भी कुछ काल तक ऐसे ऐसे हिलती रहती है, क्योंकि वो तो आत्म प्रदेशों का उसमें फैले हुए है ना उसमें। नहीं तो वो कायम हिलते रहने चाहिए, वो पूंछ अकेली इधर उधर गमन करनी चाहिए, वैसे तो नहीं देखा ना, टुकड़े होते ही कुछ काल के लिए होता है उसका। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई? हाँ, वो तो बाद में रुक जाती है, यदि जीव के प्रदेश उसमें आ जाते हैं। और बाद में भी शरीर में से जीव निकलने के बाद भी कुछ मूवमेंट्स होती है वहां पर शरीर की, उसकी अपनी योग्यता के कारण। अब मेडिकल वालों को, डॉक्टरों को पूछो, वो राइगर मॉर्टिस कहते हैं, यानी वो तो शरीर ऐसे, वो तो हाथ पर भी ऐसे हिलते हुए दिखते हैं कुछ। हाँ देखो, अभी आगे पढ़ेंगे। यदि कहा जाए कि मूर्त द्रव्य अपनी अपनी अवस्थाओं में छिन्न नहीं होता है, यदि कहा जाए कि मूर्त द्रव्य अपनी सभी अवस्थाओं में छिन्न नहीं होता है, ऐसा नियम है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रमाण से इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होती है। यानी वो तो स्कंद है, वो छिन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो मूर्त कर्म जीव द्रव्य से संबद्ध है, उसे सहेतुक ही मानना चाहिए। ये सिद्धि क्या कि कर्म जो बंधा है वो, हाँ, बिना कारण के नहीं है। यदि सहेतुक नहीं मानेंगे तो उसका नाश भी नहीं बन सकता। यदि उसे यदि उसे सहेतुक न माना जाएगा तो जो जीव निर्व्यापार अर्थात योग क्रिया से रहित है, उनके भी कर्म बंध का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, ऐसा कौन है जीव? हाँ, अयोग केवली और सिद्ध भगवान। योग क्रिया से रहित है, योग तो उसी को कहते हैं कर्म का ग्रहण करने का जो कारण रूप जो कुछ वहां पर कंपन चलता है उसको योग कहेंगे। तो जो योग के बिना इसे जो अयोग केवली है और सिद्ध भगवान है, उनके भी कर्म का बंध हो जाएगा। यदि उसको अहेतुक माना जाए तो, बिना कारण के वो अगर जीव ग्रहण करता है ऐसा मानेंगे तो। आगे इसी का स्पष्टीकरण कहते हैं। कर्म के कारण क्या मिथ्यात्व, असंयम और कषाय है, या सम्यक्त्व, संयम और विरागता है? ये दो विकल्प पूछे। इन दो विकल्पों में से दूसरा पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि सम्यक्त्व, संयम और विरागता आदि का यावत जीव द्रव्य के अविनाभावी ज्ञान की वृद्धि के साथ कोई विरोध नहीं है। अर्थात सम्यक्त्वादिक के होने पर ज्ञान की वृद्धि ही देखी जाती है, अतः वे जीव के गुण रूप से अवगत है। अवगत है नहीं, ज्ञात है, यानी सम्यक्त्व, संयम और विरागता है। वो यदि गुण नहीं होते तो दूसरे गुणों के लिए भी बाधक हो जाते, यदि विकार होते तो। इसलिए उन्हें आत्मा के स्वरूप के विनाश का कारण मानने में, कारण होने में विरोध है। अर्थात सम्यक्त्वादिक यानी सम्यक्त्व, संयम और विरागता आत्मा के स्वरूप के विनाश के कारण नहीं हो सकते। अतएव मिथ्यात्व, असंयम और कषाय उसके अगेंस्ट लिए ना, कर्मों के कारण है, यह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि मिथ्यात्वादी से अतिरिक्त जीव गुण के विरोधी और दूसरे धर्म जीव में नहीं पाए जाते हैं, कहा भी है। एक कर्मों के कारण नहीं है मानने वालों का ये दिखाना चाहिए, आचार्यों की वाणी से चाहते ना। अभी 7 नंबर का पढ़ेंगे, अलग अलग ही अर्थ लिखा ना, एक एक को पढ़ेंगे। जे बंधयरा भावा मुखयरा चावि जे दुअच्छप्पे जे चावि बंध मुखान कारयाते विविन्नेया। अध्यात्म में अर्थात आत्मगत जो भाव बंध के कारणभूत है और जो मोक्ष के कारणभूत है, उन्हें जान लेना चाहिए। ये मूलाचार में से कहें। उसी प्रकार जो भाव बंध और मोक्ष इन दोनों के कारणभूत नहीं है, उन्हें भी जान लेना चाहिए। यानी बंध के कारणभूत भावों को भी जानना चाहिए, उसके कारणभूत जो नहीं है उन्हें भी जानना चाहिए। वैसे मोक्ष के भी कारणभूत भावों को और जो उसे नहीं है उसको भी जानना चाहिए। अब वो कौन कौन से ऐसे भाव है उसको बता रहे 8वें नंबर में। ओ दया बंधयरा उवसमखय मिस्सयाय मोखयरा भावो दुपारिणमियो करणो भयवज्जियो होई। औदयिक भाव बंध के कारणभूत हैं, औषमिक शायिक और मिश्र भाव मोक्ष के कारण हैं। ये मिश्र अनेक औषमिक में हमने वो शोपशम सम्यक्वादी को लिया था, तथा पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण नहीं है। ये बात इसी में आई थी ना परसों। 9 नंबर मिच्छत्ता विरदिविय कसाय जोगाय आसवा होन्ति संजम विराय दंसन जोगा भावो य संवरो। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये चारों आश्रव रूप अर्थात कर्मबंध के कारण हैं, तथा संयम वैराग्य दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन और योग का अभाव योगाभावो कहा ना, ये संवर रूप अर्थात मोक्ष के कारण हैं। विशेषार्थ यहाँ पर जो औदयिक भावों को बंध का हेतु कहा है सो उससे गति जाति आदि सभी औदयिक भावों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जिन मिथ्यात्व वो त्व करना है, जिन मिथ्यात्व आदि औदयिक भावों के साथ बंध का अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है। अन्वय व्यतिरेक क्या क्या अर्थ है, दोनों ओर से व्याप्ति जिसको कहते हैं, यानी जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ बंध है ही है, और जहाँ बंध है वहाँ मिथ्यात्वादी जो औदयिक भाव है ही, ऐसे मिथ्यात्वादी ही बंध के हेतु जानने चाहिए। 10 नंबर मिच्छत्ता सवदारम रुम्बई सम्मत्त दिढ़कवारेन हिंसादि दुवाराणि वी दिढ़वय फल हे हिरुभन्ति। सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाट से मिथ्यात्व आश्रव रूप द्वार रोका जाता है, तथा व्रत रूपी दृढ़ फलकों से अर्थात तख्तों से हिंसादि रूप द्वार भी रोके जाते हैं। वो व्रत हुआ, व्रत करना। यदि कहा जाए कि कर्म ज्ञान और दर्शन का निर्मूल विनाश कर देते हैं, विनाश दृढ़ कपाट से आश्रय रूप द्वार रोका जाता है। अब यहाँ फलकों फलक कहा है, तख्त फलक यानी फलक और तख्त ने जैसे हमने द्वार को रोकना है तो द्वार अंदर से किवाड़ लगाते हैं ना, उसको अड़सर जिसको कहते हैं, या पूरे बहुत बड़ा ऐसा उसके फलक लगा देंगे तो वो द्वार खुलेगा नहीं। यदि कहा जाए कर्म ज्ञान और दर्शन का निर्मूल विनाश कर देते हैं सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर यावत जीव द्रव्य में पाए जाने वाले गुणों का अभाव हो जाएगा, और उनका अभाव हो जाने पर जीव द्रव्य के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। ये तो हमें मालूम है, ज्ञान ज्ञानावरण कितना भी तीव्र क्यों ना हो वो तो पूरा अचेतन नहीं करता है जीव को, उसके ज्ञान की पर्याय कुछ अंश तो उघाड़ रूप रहेगा ही। यदि कहा जाए कि जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीन कोटि स्वरूप परिणाम को न छोड़ता हुआ ही परिणमन करता है। ये द्रव्य के बाद कॉमा नहीं लगाना चाहिए, मूला रा लिखना है नीचे, दो अलग अलग है ना, मूलाचार अलग होगा और मूला राधना अलग होगी। ये पहले आए थे मूला, ये पांच मूलाचार है वो, मूलाचार अलग है, मूलाराधना अलग है। मूलाचार, मूलाचार वहाँ ऊपर एक लिखा है ना, बंद मोखन कार्य तेवी निन्नेया, नहीं उसकी तुलना उसके साथ की है। अब ये दो लाइन पढ़ती हूँ फिर मैं देखती हूँ। इसलिए उसका निर्मूल विनाश बन नहीं सकता। यदि कहा जाए कि जीव में द्रव्यत्व ही किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, यानी जीव है वो द्रव्य ही नहीं है, तो वो भी नहीं सकता, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव में द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। अभी आपका क्या प्रश्न है? आपको रेफरेंस रूप ग्रंथ चाहिए थे ना, ग्रंथ। हाँ, ये बंधयरा भावा मोखयरा भावा, ये पहले आके गया है। उत्तम च उदय बंधयरा वो समक में, ये पांच पेज पर भी आई थी ये गाथा, और वहां भी तुलना की थी तिलोक पन्नति के साथ, और यहाँ तुलना की मूलाचार के साथ। उदया बंधेरा उस मखय मिसया ये मुखयरा भावोदु परिणमियो करणो भय वज्यो होई। वही से मैं आठ नंबर की गाथा वहां पर भी दी थी, पेज पृष्ठ पांच पर, आठ नंबर की। देखेंगे अभी। जावानी के ज्ञान दे सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा में